الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. عزیز بھائیو، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے انشاءاللہ تعالیٰ آج ہم 13ویں پارے کے اہم مضامین کا جائزہ لیں گے. 13واں پارا جہاں پہ 12واں پارا ختم ہوا تو وہاں پہ سورہ یوسف کا تسلسل تھا، وہاں پہ جاری تھی سورہ یوسف، اور اس 13ویں پارے کے اندر بھی اس کا ایک اچھا خاصا حصہ اس کے اندر موجود ہے. سورہ یوسف کے بارے میں ہم نے جو کل بات اہم بات جو ہم نے جانی وہ یہ تھی کہ سورہ یوسف کو اللہ تعالیٰ نے کیوں ایک بہترین قصہ جو ہے قرآن میں سے ایک قصص میں سے ایک بہترین قصہ بلکہ سب سے بہترین قصہ قرار دیا اللہ تعالیٰ نے، اور اس کی وجہ اس کی جامعیت ہے، اس کا کمپریہنسونیس ہے، جو اس کے اندر شعبہ زندگی انسان کی شعبہ زندگی سے کوئی ایسا شعبہ نہیں ہے جس کا وہاں پہ تذکرہ اور جس کے اندر اسباق موجود نہ ہوں. اسی وجہ سے رموز سلسلہ سے لے کر انفرادی زندگی، اجتماعی زندگی، انسانی رویوں، انسانی مزاج، انسان کی نفسیات جو اور دونوں طرح کے انسان کے جو اوصاف ہیں، جو اوصاف رذائلہ ہیں اور اوصاف حمیدہ ہیں، وہ سارے کے سارے ان کا تذکرہ موجود ہے اور ان کے اندر جو اسباق ہیں، اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک بہترین قصہ قرار دیا ہے. اس وجہ سے اس کے بہت سارے اسباق اس کے اندر موجود ہیں. تو انشاءاللہ تعالی ہم آج ان کے جو نمایاں چند ایک جو اس کے اسباق ہیں ان کا ہم اس پہ ہم تھوڑی سا غور و فکر کریں گے. اور پھر جو ہے وہ اس یہ بھی ہم نے دیکھا تھا کل کہ اس کے اندر یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں پہ بڑے جب شدید ابتلاء اور ازمائش کا دور تھا، اور یہ مکہ کا آخری دور تھا جب آپ کے قتل کی سازشیں بھی ہو رہی تھی، تو ان حالات میں جن جو نامساعد حالات اور تکالیف کا سامنا تھا، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں کو ایک دلجوئی کا سامان بھی اس کے اندر موجود تھا، اور ان کو ایک سبق یہ تھا کہ آپ ان یہ تکالیف سے اور ان حالات سے اور جو نامساعد حالات آئیں ان سے بالکل نہ گھبرائیں اور دل شکستہ نہ ہوں. اللہ تعالیٰ قادر المطلق ہے، اور وہ جتنے بھی تمہاری دشمن اس وقت تمہارے دشمن چالیں چل رہے ہیں، مخالفانہ تدبیریں جو وہ کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ انہی میں سے خیر و برکت اور انہی کو کامیابی کا ذریعہ بنا دے گا. بالکل اسی طرح جس طرح حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے ان کو قتل کے منصوبے بنائے، ان سے چھٹکارا حاصل کرنے کی کوشش کی، لیکن اللہ تعالیٰ نے بہت جلد جو ہے ان کے لیے اسی کو کامیابی کا ذریعہ بنا دیا. بلکہ جب آپ کو اندھے کنویں میں ڈالا گیا، اس سے پہلے تو قتل کی سازش ہوئی، لیکن ایک بڑا بھائی جو تھا ان کا، جو سب سے بڑا بھائی تھا بھائیوں میں سے، 10 بھائی ایک ماں سے تھے، اور حضرت یعقوب علیہ السلام کی ایک بیوی سے 10 بیٹے تھے، اور پھر ان کی دوسری بیوی سے جو 2 بیٹے تھے، حضرت یوسف علیہ السلام اور ان کا جو حقیقی بھائی تھا، دوسرا ماں جایا بھائی جو تھا وہ بنیامین تھا، یہ دونوں بھائی. تو اپنی جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ان کو رشد و ہدایت ملی تھی، جو ان کی فطرت کے اندر فطرت سلیمہ تھی ان کی، اور جو ان کے اندر ہوشیاری اور جو نیک نیتی بنا پہ جو ان کے اندر جو چیز موجود تھی، جو کردار موجود تھا، حضرت یعقوب علیہ السلام ان سے بہت زیادہ پیار کرتے تھے اپنے اس بیٹے سے. اور پھر ان کو جب خواب سنایا انہوں نے، تو انہوں نے بتایا کہ بیٹے یہ اپنے بھائیوں کو خواب مت سنانا ورنہ آپ کی جان کے دشمن ہو جائیں گے. لیکن بہرحال جو اللہ تعالیٰ کی جو قدرت ہوتی ہے، وہ جو اس کے فیصلے ہیں وہ ہو کے رہتے ہیں. جب آپ کے بھائیوں نے پھر مل کے انہوں نے کہا کہ اس کو مارو نہیں، اندھے کنویں میں ڈال دو، ان کو ڈالا گیا، تو 3 دن کے بعد جب نکالا گیا کنویں سے، تو پھر آپ کو ایک قافلہ جو ہے مصر لے گیا اور وہاں پہ مارکیٹ میں بیچ دیا. تو آپ اندازہ کیجیے. اور پھر وہاں پہ ایک انتہائی متمول شخص جو حکومت کے بڑا اہم عہدے دار یا غالباً کوئی وزیر کے عہدے کا جو شخص تھا، اس نے آپ کو خریدا. تو غالباً 7 یا 8 دنوں کے اندر اندر اللہ تعالیٰ نے آپ کو گوشہ گمنامی سے نکال کر، یا بالکل ایک حقیقی موت کا جب آپ کو سامنا تھا، ان حالات سے نکال کر. آپ اندازہ کیجئے کہ ایک شخص جنگل بیابان کے ایک اندھے کنویں کے اندر جو ہے 3 دن راتیں جو ہے وہاں پہ گزار رہا، وہاں پہ بڑا ہو، تو اس کی کیفیات کا اندازہ کیجئے. یا جو عام شخص ہوتا ہے، اگر اس کو دیکھیں تو اس کی مایوسی کا کیا عالم ہوگا، کہ اس کو تو یہ بھی سوچے گا کہ اس اندھے کنویں سے یا اس جنگل بیابان میں تو کسی کے گزرنے کا کوئی امکان ہی نہیں ہے، میری موت یقینی ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے ان حالات میں 7 یا 8 دن کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس شخص کو دنیا کی جو متمول اور سب سے سولائز متمدن قوم تھی، اس کے ایک وزیر کے گھر پہنچا دیا، और वहां से आपके उरूज का रास्ता जो है वो हमारे होना शुरू हो गया। अल्लाह ताला ऐसा मुसब्बिबुल असबाब है, ऐसे जो है अल्लाह ताला जो चीजों को जो है वो पलट देता है, ये सारे असबाब उसके जो है तहत अंजाम पजीर होते हैं। तो ये एक बड़ा जो है सबक भी इसके अंदर मौजूद है। बहरहाल फिर ये एक पूरी एक कहानी, तो जैसे पहले कल भी हमने कहा कि कहानी आपको हमारे कमोबेश हर शख्स को जो है वो इल्म में है, सिवाय इसके कि इसको मैं चाहता हूं आपके लिए कि आप इसको हमेशा अच्छी तफासीर की रोशनी के अंदर इसको पढ़ें, ताकि जिस तरीके से इसको कंटेमिनेट कर दिया गया इस कहानी को हमारे जो है राइटर्स ने और हमारे मजहबी जो है रहनुमाओं ने, हमारे जाकरों ने, हमारे खतीबों ने, जो जो जिस तरीके से इस कहानी को जो है इसमें इजाफे करके इसको जो है बहुत ही गैर अखलाकी हद तक जो है वो चीजें इसके अंदर शामिल कर ली हैं, उनसे पाक हो के आप कुरान का जो इसका जो उसलूब है उसकी नजर से आप तफासीर में इसको देखें, तो फिर आप देखेंगे कि इसके अंदर कितनी ज्यादा हिकमत और रमूज इसके अंदर पोशीदा है। इसमें सबक में जहाँ पे बहुत सारी जो है वो बातें आगे चल के आती हैं, एक तो ये भी है कि तमसील की सूरत के अंदर ये नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मुशरिकीन मक्का की तमसील भी है कि जहां जहां पे मुशरिकीन मक्का का जिक्र है ये हजरत यूसुफ भाइयों का किरदार मौजूद है, और जहां पे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का किरदार मौजूद है वहां पे भी एक पैगंबर का और अल्लाह ताला के एक नेक बंदे हजरत यूसुफ अलैहि सलाम का जो है वो किरदार मौजूद है। तो इन दोनों को और इन दोनों का अंजाम कार भी बिल्कुल एक जैसा बेदमे होता है। तो कुरान ने इस कहानी को सुनाकर, इस किस्से को सुनाकर, इसको इसके एक एक किरदार को, इसके एक एक नतीजे को बनी ये कुफारे मक्का के ऊपर जो है चस्पा कर दिया है। और इसी तरीके से ये जो कुरान के जितने भी किस्से आते हैं इस तरीके पे वहां पे जो किरदार वहां पे सामने आते हैं वो कोई ना कोई किसी चीज की तमसील के जमन में आते हैं और किसी न किसी करेक्टर को वो रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। इसका एक सबक ये भी है कि मुसीबत और नेमत जो है ये बाज़ों का इंसान में मुसीबत आती है तो बड़ा घबरा उठता है, समझता है कि ये तो बड़ी मुश्किल आन पड़ी है और मेरे लिए ये जो है जहमत का बायस है। लेकिन दरअसल अगर अल्लाह ताला पे इंसान भरोसा करे और फिर सब्र करे तो उसी के जरिए से अल्लाह ताला राहत तक और खुशी तक पहुंचाने का जरिया उसको बना देता है, और इंसान को हर मुसीबत और हर रंज और हर दुख और तकलीफ में अल्लाह ताला ही की तरफ रुजू करना चाहिए, और उसके अंदर जो खैर पोशीदा है उस खैर को अल्लाह ताला से मांगना चाहिए, और यूं अल्लाह ताला जो है वो उन चीजों को उस शख्स के लिए बेहतरीन राहत का और अच्छे खुशी का जरिया बना देता है। एक सबक हजरत यूसुफ अलैहि सलाम का किरदार भी है खुद कि अच्छे अखलाक हैं, आला औसाफ हैं, बेहतरीन तरबियत है, बेहतरीन फितरत सलीमा है जिनके हामिल खुद हजरत यूसुफ अलैहि सलाम थे, ये बहरहाल अपना रंग दिखा के लाती है। चाहे ये आप जिस पूरा भी किरदार जो हजरत यूसुफ अलैहि सलाम के सामने आता है, चाहे बाजार के अंदर बिकने का हो या फिर बात के अंदर, हजरत यूसुफ अलैहि सलाम ने कहीं पे कोई वावीला नहीं किया और कहीं पे जो है बेसब्री का मुजाहरा नहीं किया, और आपने बड़ी पामर्दी से और अपनी बड़ी इस्तेकामत से आप जो है इन मसायब के ऊपर जो है वो डटे रहे और अल्लाह ताला के साथ अपने रब्त को और अपने ताल्लुक को जो है मजबूत रखा। और फिर जो है वो इसके साथ साथ हजरत हजरत याकूब अलैहिस्सलाम का भी किरदार सामने आता है कि हजरत याकूब अलैहिस्सलाम अपनी एक जो है एक बड़े रकीकुल कल्ब यानी बड़े सॉफ्ट हार्टेड जिस शख्स थे, अल्लाह ताला से रुजू करने वाले, साबिर और शाकिर और उम्मीद के दामन न छोड़ने वाले, यानी जब भी जो है उनको बेटे इसके बारे में कहते थे, हत्ता कि जब हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को जब जो है वो बड़ा अच्छा ओहदा मिल गया और वजारत के दर्जे का ओहदा मिल गया वहां पे, और फिर अपनी जो है वो माँ बाप को जो है और खानदान कबीले को बुलवा भेजा, तो इस बात को 18 से 20 साल गुजर चुके थे, तो अभी भी कनान के अंदर जब रहते थे तो अपने भी अपने बेटे को और अभी भी जो है उम्मीद का दामन ना छोड़ा, तो बेटे को कहते थे कि जाओ यूसुफ की खबर लो और अल्लाह ताला की रहमत से ना उम्मीद ना हो। तो ये जो है ये किरदार भी हमारे सामने आता है, और यूसुफ का किरदार तो है ही एक बड़ा साबिर और शाकिर शख्स का, एक बाहिम्मत और बाइफत नौजवान का, एक उलुल अजम दाई हक का, एक मुबल्लिगे तौहीद का, एक साले और मुदब्बिर और मुंतजिम हुक्मरान का उसकी सूरत के अंदर आता है। और बड़ी खूबियां हैं हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के किरदार के अंदर जो हमारे लिए मिशल राह हैं, और इसीलिए इसके अंदर जो है इसको समो दिया गया है और और लोगों के लिए बहुत सारा सामान जो है इसके अंदर रख दिया गया है। फिर जो है एक बात हमें ये भी सामने आती है कि ये इफ्फत और अमानत और इस्तेकामत सारी भलाइयों का सरचश्मा है जिसका मुजाहरा हजरत यूसुफ अस्सलाम किया, लेकिन ये औरतों के लिए भी और मर्दों के लिए दोनों के लिए ये उनका एक जो है किरदार के अंदर एक एक उनके जेम है उनके किरदार के अंदर। और फिर ये भी है कि जो दीन के ऊपर इस्तेकामत जमाते हैं और डटे रहते हैं और अल्लाह ताला से रुजू जो है उनका नहीं टूटता, अल्लाह ताला की तरफ रुजू हमेशा रखते हैं, उसके साथ अपने ताल्लुक को कायम रखते हैं चाहे जैसे भी हालात हों, तो बहरहाल अल्लाह ताला उनको एक दिन गालिब करता है और अल्लाह ताला उनको कामयाब और कमरान करता है। इससे एक हमारे बात ये भी सामने आती है कि मर्दों और औरतों का इख्तलात खलवत के अंदर मर्द और औरत का मिलना जो है ये फितने का बायस है, और इसके बारे में नबी करीम सल्लम की हदीस मुबारक भी है कि एक मर्द और एक औरत के दरमियान में तीसरा जो है वो शैतान होता है, और इसमें ये जो एक एक सबक है यहाँ पे आपको पता है कि जब यूसुफ अस्सलाम को जो है अजीज की बीवी ने जो है जब बुलाया तो उसकी ये जो है वो बात बताई गई है। फिर ये है कि जो एक सच्चा दाई है वो उसका काम उसके जिम्मे उसको पता है कि उसका काम दावत को पहुंचाना है, और हालात खा कैसे भी क्यों ना हो, चाहे इंसान किसी भी हालत में क्यों ना हो, इस फरीजे से वो सबकदोश नहीं हो सकता। और जो सच्चा और अच्छा दाई है वो हर हालात के अंदर परेशान कुन हालात के अंदर भी मुश्किल हालात भी हैं चाहे जो है उसकी कैफियत कैसी ही क्यों ना हो, उन हालात के अंदर वो इस दावत को दावत के फरीजे से वो गाफिल नहीं रहता। और आप इसे यूं डिस्क्राइब कर सकते हैं कि ये जो दाई है ये हम वक्त 24/7 और 365 डेज अ ईयर और पूरी जिंदगी में उसका ये काम जो है उसके उसके रहता है। जहां भी कोई शख्स जरा सा भी मिलेगा तो उसको जो है इस हवाले से वो उसकी बात करने का अंदाज उसका जाविये निगाह चीजों को देखने का बाहर दावत के हवाले से होगा और उस दावत जो है के हवाले से। और आप जब आपको पता है कि आप यूसुफ अलैहिस्सलाम जब जेल के अंदर थे तो जेल के अंदर भी अपने साथियों को जो है वो दावत पहुंचाते रहे और अल्लाह ताला की तौहीद बताते रहे, और वो इस फरीजे से भी कभी भी जो है सबकदोश नहीं हुई है। ये जो है उसका एक सबक है। फिर एक सबक है कि जो दाई होता है जैसे यूसुफ अलैहिस्सलाम खुद एक नबी और दाई, तो उसको अपनी जो क्रेडिबिलिटी है अपने किरदार का बहुत ज्यादा ख्याल जो है वो रखना चाहिए और होता है, क्योंकि उसकी उसके जो किरदार है उसकी जो अपनी क्रेडिबिलिटी है वो उसके दावत के साथ जुड़ी है। अगर उसका दामन दागदार होगा तो उसकी दावत जो है वो कोई मानी नहीं रखेगी, उसकी दावत पे कोई असर नहीं होगा, लोग उसकी दावत से उंगली उठाएंगे कि इसका अपना किरदार तो ऐसा है और फिर जो है ये देखें दावत जो है ना ऐसी पहुंचाता है। और इस वजह से अगर उसका दामन दागदार होगा तो उसकी दावत पे इंतहाई मुजिर और मनफी असरात बताते। आप इसको यूं भी कह सकते हैं कि आप देखें कि ये किस पस मंजर में बात है कि जब हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को जेल से निकालने के लिए जो है वो पेशकश की गई तो उन्होंने जेल से बाहर आने से इनकार कर दिया और कहा कि पहले मेरे दामन पे लगे हुए जो जो दाग है उसकी जो है उसकी सफाई की जाए और इस बात का इतराफ किया जाए कि मैंने कोई गुनाह का काम नहीं किया बल्कि मुझे बेगुनाह जेल के अंदर जो है वो डाला गया, और इसके बाद जो इसकी सफाई के बाद ही आपने जेल से बाहर आना जो है वो पसंद किया। और यही बात नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भी है, आपने जब लोगों को दावत दी पहली दावत और दूसरी है तुझे, तो लोगों को कहा कि लोगो मैंने तुम्हारे दरमियान में एक उम्र गुजारी है, तुम जानते हो कि मैं मेरा किरदार किसके, मैंने कहा आज तक तुमसे कोई झूठ नहीं बोला है, तुम मुझे सादिक और अमीन के नाम से जो है पहचानते हो, तो क्या मैं तुम्हें ये जो दावत पहुंचाने जा रहा हूँ इसके मामले में मैं झूठ का इस्तेमाल करूंगा। ये बहुत बड़ी जो है आर्ग्यूमेंट था और बहुत बड़ी जो है वो दलील थी जो आपने पेश की, तो इस हवाले से अपनी दाई को अपने किरदार के बाहर वो करना चाहिए ख्याल रखना चाहिए। अल्लाह ताला जब किसी को तकलीफ में मुबतला करने का फैसला कर लेता है तो फिर जो है वो उसको कोई रोकने वाला नहीं है, और जब अल्लाह ताला किसी को जो है वो साथ खैर का मामला किसी के साथ इज्जत का मामला करना चाहे तो उसको भी कोई नहीं रोक सकता, अल्लाह ताला हर चीज के ऊपर गालिब है। अल्लाह ताला ने इस बात को इस सूरत के अंदर फरमाया वल्लाहु गालिबुन अला अम्रिही वलकिन अक्सर अन्नास ला यालमून, अल्लाह ताला जिस तरीके से चाहता है अपने अमर को जो है वो गालिब कर देता है लेकिन लोगों को इसका शऊर नहीं है, लिहाजा लोग अपनी कहीं जो है वो पेशबंदियां करते हैं और साजिशें और कोवर्ट ऑपरेशन और इस तरीके से करते हैं, लेकिन ये जो चीज अल्लाह ताला के अगर सुपुर्द कर दी जाए और अल्लाह ताला से मदद मांगी जाए तो वही चीज ही देर पा होगी और उसी के अंदर खैर और बरकत होगी। सूरत के आखिर में एक ये बात भी बताई गई है कि जो अल्लाह ताला की जो जात हजरत इब्राहिम हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को अंधे कुएं से निकाल कर इस मिस्र के तख्त पर ले जा सकती बिठा सकती है, तो इस बात पे भी कादिर है कि जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके साथी जिस तरह मुश्किल हालात में आज जो जिस तरीके से वो उनको सामना है, बईद नहीं है कि अल्लाह ताला इनको भी गालिब कर दे और उनका ये दावत और इनका ये दीन तमाम अदियान के ऊपर इस वो गालिब आ जाए। तो ये चंद एक जो इस्बाक थे इस सूरत के इस किस्से के, अगर जिसके अंदर बहुत ज्यादा इस्बाक भी पोशीदा हैं, बहुत दूसरे भी पोशीदा, तो जरूरत इस बात की है कि इसको तफासीर के साथ जो है मुख्तलिफ तफासीर की रोशनी के अंदर इसको वो तफसील के साथ पढ़ा जाए और इसके तमाम रमूज और इसके अंदर जितनी भी हिकमतें पोशीदा हैं उनके जो है वो नोट्स लिए जाएं। इसके बाद सूरह राद है। सूरह राद भी जो है ये भी इसी दौर की सूरत है जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आखिरी दौर था, जब आप मक्का के अंदर थे, 12 या 13 13 नबी में या 12 नबी में ये सूरत जो है 13 के शुरू में ये 12 के आखिर में ये सूरत जो है इसके बारे में कहा जाता है कि ये नाजिल हुई है। इसके मरकजी मजमून भी है कि जो है वही है जो दावत है, जो तौहीद की दावत है, जो रिसालत की दावत है, जो आखरत की दावत है, और यही ये दावत जो आप पेश कर रहे हैं यही हक है, और इसको जो लोग इसको नहीं मानेंगे तो फिर जो है वही लोग अपनी बड़ी शदीद गलती के ऊपर हैं और अपने लिए नुकसान का जो बायस कर रहे हैं। इस सूरत के अंदर खास ज़हन में रहे कि जैसे पिछली सूरतों के अंदर और इससे पहले वाली सूरतों के अंदर भी अल्लाह ताला के बहुत सारे अंबिया अलैहिस्सलाम के कसस जो है वो किससे बयान किए, इसके अंदर कोई कसस उल अंबिया और रसूल कोई किसी का जिक्र नहीं, इसमें खासतन तौहीद रिसालत और मुआद यानी आखरत के अकीदे का जो वो जिक्र है। और इस सूरत की खास बात यह भी कि अपनी बलागत के एतबार से, अपनी जामियत के एतबार से और मुनफरद उसलूब के एतबार से बड़ी तासीर रखती है। इसके जो 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 फवासिल हैं, जो आखिर में कवाफिया हैं, जो सूरत के आखिर के अल्फाज हैं, वो बड़े ही उसके अंदर जो है वो रिदम है उनके अंदर। इसमें तौहीद का बयान जो है वो खास तौर पे बहुत बड़े उस अंदाज के अंदर, मुसलसल अंदाज के अंदर बयान किया गया है। पहले अल्लाह ताला की रबूबियत, और रबूबियत को फिर हम बार बार ये इसकी वजाहत करते चले आ रहे हैं कि रबूबियत ये है कि अल्लाह ताला तमाम कायनात के अंदर जितनी चीजें हैं जो 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 मखलूक है और चाहे वो किसी भी हैसियत के अंदर है, उनके जो जरूरियात हैं उनको जानने वाला और उनको पूरा करने वाला जो है अल्लाह ताला की जात है, ये अल्लाह ताला का रब होना है। और इस रबूबियत को वाजे किया गया है सूरत के अंदर, और फिर रबूबियत के जरिए से उलूहियत का तकाजा किया गया है कि देखो फिर कौन है इलाह। मसलन ये बताया गया कि जमीन व आसमान जो है बनाने वाला और जमीन व आसमान को जो है खड़ा करने वाला, अर्श को कायम करने वाला बगैर किसी सुतूनों के इनको, और फिर शम्स व कमर का एक जो है उसने वजीफा मुकर्रर कर रखा है, वो दिन रात चले जा रहे हैं और दिन और रात फिर आ रहे हैं, और इन सब का इंतजाम करने वाला जो है, फिर पानी देखे बारिशें बरसाने वाला, फिर उसके जरिए से फल फूल आने वाला, फिर फलों के देखे कि वही एक ही पानी है, मुख्तलिफ दरख्त जो है उसी से पानी को इस्तेमाल करके, जमीन को इस्तेमाल करके मुख्तलिफ किस्म के जायके फिर उसके अंदर आते हैं। तो ये कहा गया कि ये इंतजाम चलाने वाला ये कौन है, ये अल्लाह ताला की सारी रबूबियत का जिक्र किया गया है। तो फरमाया कि जब अगर तुम इस नतीजे में पहुंचो कि ये अल्लाह ही की जात है जो ये है, तो फिर इबादत और इलाह कोई और क्यों, तो इसी इसी का नाम जो है उलहियत, इसी का तकाजा किया गया है कि फिर उसी इलाह की इबादत करो। फिर अल्लाह ताला की दूसरे नंबर पे फिर अल्लाह ताला की कुदरत यानी तौहीद कुदरत का जो है वो बयान तुरंत को वाजे किया गया है, और फिर उलूहियत का तकाजा किया कि देखो ये जो बादल आते हैं और ये जो बारको बारह का पूरा सामान है, इसका जिम्मेदार इनका मुंतजिम कौन है, इसको इसका इसको कौन जो है वो चला रहा है, और फिर देखो कि जो रिज की कुशादगी है और उस रिज की तंगी है और शायद इस पे कौन कुदरत रखता है। तो अगर तुम इस नतीजे पे पहुंचो कि इस पे अल्लाह ताला कुदरत रखता है, तो फिर कोई और जो है तो इबादत का सजावार कौन है, फिर कोई और जो है इलाह क्यों कर हो सकता है, तो फिर उसी की जो इबादत की जाए, उलूहियत का तकाजा किया। फिर कहा गया कि एक और तौहीद दुआ से जो है इस्तदलाल किया गया, मसलन फरमाया गया कि ये तो मिन दूनिल्लाह, अल्लाह ताला को छोड़कर दूसरों को जिनको पुकारते हो, वो क्या वो तुम्हारी दुआओं को जवाब सुन दे सकते हैं? वो तो सुम्मुन बुकमुन है, वो तो कुछ न सुनते हैं न जानते हैं, दुआएं जो है उनकी वो दुआओं को सुनने वाले नहीं है। लिहाजा इन लोगों की जो इनको पुकारते हैं उनकी दुआएं तो सदाबा सहरा है, उनकी तो ऐसी है जैसे सहरा में कोई अजान दे रहा है और जो है उसको कोई सुनने वाला नहीं है। अल्लाह ताला को पुकारना ही बरहक है, तुम जानते हो और तुम्हें पता है कि जब भी मुश्किल पेश आती है तो तुम अल्लाह को पुकारते हो। जब पुकारना ही उसी को बरहक है तो फिर इबादत करना किसी और को बरहक कैसे हो सकता है? तो ये जो इसका जो है वो इस तरह तौहीद दुआ से उलूहियत का तकाजा किया गया है कि तुम उसी की उसी को इलाह मानो, उसी को जो है उसी की इबादत करो। फिर उसके बाद और भी दीगर भी जो है दलाल दिए गए, मसलन हर हमला के हमल में कमी और ज्यादती का इल्म जो है वो अल्लाह ताला के इल्म में होता है, ये भी एक दलील लाई गई है। फिर तौहीद इल्म से जो है इस्तदलाल लिया गया है कि तुम चाहे जोर से पुकारो या चाहे आहिस्ता अल्लाह ताला को पुकारो, अल्लाह ताला के इल्म में है, वो जानने वाला है हर चीज को। हत्ता कि ये तो पुकारना है, लबों का हिलना है, हमारे तो दिलों के अंदर जो जो विश्वास पैदा होते हैं, जो प्री मेच्योर थॉट्स जो इंसानों के दिल में पैदा होती है, जिन पे इंसान खुद भी बाज़ औक़ात उनको जानने की कुदरत नहीं रखता, उनको भी यानी जिनको इंक्लिनेशंस जो है हम कहते हैं या इंटेंशंस जो है होती हैं, तो वो भी उनको भी अल्लाह ताला जो है जानता है। ये तौहीद इल्म से है जो इस्तदलाल लाया गया है। तो ये जिन चीजों को खुद इंसान नहीं जानता उनको अल्लाह जानता है, तो फिर कैसे कोई और शख्स जो है वो उसका जो है उसका इबादत का हकदार हो सकता है? इन तमाम तौहीद के इन दलाइल की रोशनी के बाद मुशरिकीन पर जो है वो फर्द जुर्म आयद की गई है कि ये रिसालत के मुनकर हैं, ये आखरत के मुनकर हैं, ये मकर फरेब से काम रहे कर रहे हैं। और फिर उसके बाद बड़ी खूबसूरत तमसील का जो है वो जिक्र किया गया है कि कुरान का जो फैजान है ये बिल्कुल आम है। कुरान की मिसाल जो है वो बारिश की तरह है कि जब बारिश होती है तो मुख्तलिफ किस्म की जमीन जो है वो मुख्तलिफ किस्म के असरात लेती है। बिल्कुल जो जो चटियल बयाबान जमीन है उस पर किसी किस्म का जो है कोई वो नहीं होता, लेकिन जब बारिश में जिस का जमीन का या जिस शख्स का जितना जर्फ होगा वो इतनी बारिश कलेक्ट करेगा, ये कुरान का फैजान हो रहा है। तो जिस जमीन के अंदर जो है जो मादनियात उसके अंदर पाई जाती है पानी के अंदर, वो अलग होकर जमीन के अंदर चली गई है, जमीन उनको जजब कर लिया है और जमीन को जरखेज बना दिया है। इसी तरीके से यही मिसाल है तौहीद की, वो दिलों के अंदर जड़ पकड़ के जो है वो गहरी हो जाती है और फिर ईमान से उसमें मजीद इजाफा होता है और उससे जो है एक बहुत ही उससे जो इंसान के लिए और इंसान के औसाफ के लिए बहुत ही नफा बख्श है और इंसानों के दिलों के अंदर इससे जो है बहुत रोशनी जो है पैदा होती है और इंसान कुफर और शिर्क के अंधेरों से जो है बच जाता है। इसके बरक्स जो है वो शिर्क बातिल है, वो उड़ जाता है बिल्कुल झाग की तरह, जैसे किसी चीज के ऊपर बहुत सारी झाग हो पानी की और जब भी वो खुश्क होता है तो नीचे से बिल्कुल कोई चीज नहीं बचती, ऐसे ही जो है वो मिसाल बयान की गई है। फिर इसके बाद जो है वो अहले तकवा के और जो हकीकी अकलमंद है जिनको कुरान ने जो है उलुल अलबाब कहा है, उनके आठ जो है वो औसाफ बयान हुई है कि अल्लाह ताला के अहद को पूरा करते हैं, शिकनी नहीं करते, रिश्ते जोड़ते हैं यानी वो जो रिश्तों को सिला रहमी करते हैं, रिश्तों को तोड़ते नहीं है, रिश्तों को जोड़ते हैं, कतर रहमी नहीं करते, अपने रब से डरते हैं, हिसाब वाले दिन से या बुरे हिसाब से खौफ रखते हैं, अल्लाह ताला की रजा के लिए सब्र करते हैं, नमाज कायम करते हैं, कुफी और लानी अनफाक करते हैं और बुराई का जवाब भलाई और अच्छाई से देते हैं। और फिर साथ ही कंपैरिजन किया गया है कि जो बदबख्त और अशकिया और बदबख्त लोग हैं जो जो जहन्नम के सजावार होंगे और जिन पे लानत की गई है वो अल्लाह ताला के अहद को तोड़ते हैं, रिश्तों को काटते हैं, सिला रहमी नहीं करते जो है वो कतह रहमी करते हैं, जमीन में फसाद फैलाते हैं। इसके अलावा भी जो है उनके किरदार बताया गया है कि यही वो लोग हैं जो हिस्सी मौजजात का मुतालबा करते हैं कि समथिंग कोई ऐसी हो जो हमें नजर आए वो पैगंबर लेके आए और अल्लाह को याद नहीं करते और दुनिया की जिंदगी में जो है वो मगन रहते हैं। ये जो है सूरह अर्राद के जो मजामीन थे। और इसके बाद जो है सूरह इब्राहिम है, सूरह इब्राहिम जो है वो तारीखी दलाइल से इस सूरत के अंदर मुशरिकीन मक्का को जजा और सजा का कानून जो है वो समझाया गया है और इसके लिए एक लफ्ज लाया गया है अयामुल्लाह, अल्लाह ताला के दिन। सो वैसे तो सारे अल्लाह ताला के दिन होते हैं लेकिन खास तौर पर इससे जो मुराद है अल्लाह ताला के वो दिन जब उसने कौमों के जो कौमों के जो इंजाम है उनके बारे में उसने फैसला किया, या तारीख के अंदर जब जब अल्लाह ताला ने कौमों को नीस्त नाबूद किया तो उन दिनों को अल्लाह ताला ने, ये 2 दफा कुरान में ये इस्तेलाह इस्तेमाल हुई है, इनको फिर अल्लाह ताला के दिन से जो है मुराद है। मसलन जैसे योम बदर का दिन, जैसे अल्लाह ताला ने जो उसको भी योम फुरकान कहा है जब अल्लाह ताला ने कुफार को बड़ी जो है जबरदस्त शिकस्त दी, और जैसे योम आशूर था जिस दिन जो है पूरी फिरौन और हमान की पूरी कौम जो है और उनके लश्कर जो अल्लाह ताला ने तबाह कर दिए और बनी इसराइल को निजात दी, वो वाला दिन, इन दिनों को जो अजामुल्ला कहा गया है। फिर कुरान का जो है इस तारुफ किया गया है कि कुरान को अल्लाह ताला ने इसकी नजूल की हिकमत क्या है, और अरबी जबान में इसके नजूल की खास तौर हिकमत का जिक्र किया गया है, ताकि आप अपनी इस कौम को इस अरबी मुबीन के अंदर आप जो है वो ये बातें समझा सकें जो आप अल्लाह ताला ने वही की हैं, और इस दावत को आप दे सके और ये कुरान को समझ सके। फिर जो है अयामुल्ला ही से, अल्लाह ताला ही के दिनों से मूसा और फिरौन के तज़किरे का जिक्र है, और शुक्र और कुफर का बड़ा तफसीली मवाजना है कि मूसा शुक्र की रिप्रेजेंटेशन है और फिरौन जो है नाशुक्री और कुफर का जो है एक एम्बॉडीमेंट है, और दोनों इसी के ऊपर जजा और सजा से जो है इस्तदलाल किया गया है कि दोनों को किरदारों को देख लें और फिर आप खुद फैसला करो कि कौन इनमें से शुक्र का रवैया अख्तियार करने वाला था और कौन कुफर का रवैया अख्तियार करने वाला था, और फिर इनके साथ जो है उनका अंजाम कार क्या हुआ, खुद जो है फैसला कर लो। फिर इसके बाद शुक्र और कुफर के दरमियान कश्मकश की एक तारीख है, उसको जो है वो बताया गया है, और उसमें रसूलों का किरदार उजागर किया गया है कि रसूलों ने इसमें जो है क्या किरदार किया है। रसूल हमेशा ही से शुक्र की यानी तौहीद की जो है वो दर्स देते रहे, और तौहीद ये है कि अल्लाह ताला को एक मानकर उसके निजाम पे, उसकी दावत पे लबैक कहना और जो है जिंदगी उसी की रोशनी में गुजारना, ये शुक्र का रवैया है। और उसके बदले में कुफर का रवैया ये है कि उसको ना मानना, उसकी तकजीब करना, उसको झुठलाना और एक दूसरा तर्ज जिंदगी इस्तेमाल करना। फिर उसके बाद में आगे कि शुक्र ना करने वाले जो कुफर के इमाम है और उनके कमजोर पैरू, उनको खबरदार किया गया है कि वो बहरहाल अपनी फिक्र कर लें और सोच लें कि उनका अंजाम क्या होगा। उसके बाद फिर कलमा तैयबा और कलमा खबीसा को दो दरख्तों से तशबीह दी गई है, एक तमसील है कुरान के अंदर। और कलमा तैयबा से मुराद वो कलमा तो भी होता है जो आमतौर पर हमारे यहाँ मुराद लिया जाता है कि कलमा तैयब जो है ला इलाहा इल्लल्लाह, लेकिन यहाँ पे मुराद जो है वो तमाम कुरान और हदीस और तौहीद का इकरार जो है उसको कलमा तैयब, कुरान और हदीस की तमाम बातें कलमा तैयब है और उसकी तालीमात कलमा तैयबा है, और फिर जो है उसके जो कुछ कुरान और हदीस के खिलाफ है वो कलमा खबीसा है, और फिर जो है तौहीद का इकरार कलमा तैयबा है। और जब मैंने पहले जैसे कहा कि जब इंसान तौहीद पे इकरार कर लेता है और ये तौहीद इंसान के दिल में जागुजी हो जाती है और फिर उसमें मजीद ईमान से उसमें इजाफा हो जाता है, तो उससे जो शजर फूटता है वो शजर जो है उसकी शाख आसमानों में जो है जाती है, इसको इस तमसील में बयान किया गया है, और वो अपने बरगो बार लाता है और फलता फूलता है, अल्लाह ताला उसको फैलाता है। जबकि इसके मुकाबले के अंदर जो है कलमे खबीसा है वो बिल्कुल उसकी जड़ें गहरी नहीं होती हैं कल्ब के अंदर वो इंसान, क्योंकि इंसान कुदरती तौर पर अल्लाह ताला की जो जो पहचान है और मार्फत है वो कल्ब इंसानी के अंदर रख दी गई है। अब जो है जब इंसान उससे हराफ करेगा तो बिल्कुल सती तौर पे वो जज्बात जो होंगे, वो जो जो नजरिया है, वो जो जो एराज है, वो जो इनकार है, वो बिल्कुल सतही है और उसकी जड़ें जो है वो गहरी नहीं है। और इनको इस तरीके से अल्लाह ताला ने दो दरख्तों से जो तशबीह दी है, एक ही जड़ें हैं वो डीप रूटेड हैं और उसके बरगो बार आसमानों में हैं, जबकि दूसरा जो है वो बिल्कुल उसकी कोई बुनियादें नहीं है, वैसी है जैसे किसी दरख्त को जमीन के ऊपर ऊपर खड़ा कर दिया हो और हल्की सी जरा सी एक चोट या हल्की हाकी एक जरा उसको लगे और फिर वो जमीन बोस हो जाए। फिर अल्लाह ताला की नियमतों का शुक्र अदा करने का मुतालबा किया गया है कि जब तुम देख लो कुफर और शिर्क, सबर और शुक्र का जो है, शुक्र और कुफर का ये मवाजना जो अभी तुम्हारे सामने सारा पेश किया गया है, इसकी रोशनी के अंदर जो है शुक्र का रवैया अख्तियार करो, अल्लाह ताला को मानो, उसकी तौहीद को, उसके जो रसूल की दावत को मानो, इसका मुतालबा किया गया है। और फिर आखिर के अंदर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की तारीख से, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के जिक्र से शुक्र और तौहीद पर इस्तदलाल किया गया कि किस तरीके से खुद हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम और उनकी सारी जिंदगी जो है वो शुक्र और तौहीद की जो है वो एक गवाह है, और इसी से जो है इस्तदलाल लिए कि इसी गिनती के रास्ते पे चलो, सूरह इब्राहिम यहाँ पे खत्म होती है। कल इंशाल्लाह ताला 14 पारे की मज़ामीन का जायजा लेंगे। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वजज़ाकुल्लाह।